नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमें हाल के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक भूचाल के बिल्कुल बीच में ले जाती है।
हाँ, टिमोथी गाइटनर की किताब है स्ट्रेस टेस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ मतलब कोई सूखी रिपोर्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की कहानी है, उन लोगों की कहानी, उन फैसलों की कहानी जिन्होंने शायद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया।
और खासतौर पे ये किताब जो है वो संकट के समय लीडरशिप की भूमिका, उनके असल लक्ष्य क्या होते हैं, इस पर काफी रोशनी डालती है।
और ये आज भी जरूरी है ना, क्योंकि देखिए, आर्थिक संकट तो वो आते जाते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये किताब हमें एक अंदरूनी नजरिया देती है कि कैसे कैसे इतने भयानक दबाव में फैसले लिए जाते हैं।
नेता क्या सोचते हैं, किन ताकतों से उन्हें जूझना पड़ता है, और उनके फैसलों का असर हम सब पर कैसे पड़ता है।
सही कहा, और ये समझना भी जरूरी है कि कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए कितने मुश्किल और हाँ कितने अलोकप्रिय कदम उठाने पड़ जाते हैं।
तो पहले लेखक की बात कर लेते हैं, टिमोथी गाइटनर।
हाँ जरूरी है जानना, जरूरी है कि वो कौन थे, क्योंकि वो सिर्फ कहानी कह नहीं रहे, वो कहानी के किरदार हैं।
बिल्कुल, वो कोई बाहर बैठकर विश्लेषण करने वाले नहीं थे, वो संकट के दौरान, मतलब बिल्कुल एक्शन के बीचों बीच थे।
हाँ, जब 2008 का संकट गहराना शुरू हुआ, वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे।
मतलब वॉल स्ट्रीट का मुख्य रेगुलेटर एक तरह से, और इमरजेंसी में लोन देने वाला भी।
बिल्कुल, फिर 2009 में जब संकट बिल्कुल चरम पर था, राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें ट्रेजरी सेक्रेटरी बना दिया।
यानी हमारे यहाँ जैसे वित्त मंत्री होते हैं वैसा पद।
हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि संकट से निपटने के जितने भी बड़े फैसले हुए,
हाँ,
जो भी बड़ी योजनाएं बनी,
बेयरस्टोन्स को बचाना हो,
लेमन ब्रदर्स का दिवालिया होना,
या फिर वो AIG का विशाल बेलआउट, बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट, वो सब में शामिल थे।
बिल्कुल, और उनका जो घोषित लक्ष्य था, उनकी भूमिका का सार वो यही था कि किसी भी कीमत पर पूरे वित्तीय सिस्टम को ढहने से रोकना है।
और उनका तजुर्बा सिर्फ 2008 का नहीं था।
नहीं, उससे पहले भी 90 के दशक में मेक्सिको, एशिया, ब्राजील, वहां जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट आए थे,
हाँ, उनको संभालने में भी उनकी भूमिका थी।
तो इस सारे अनुभव ने उन्हें एक बहुत जमीनी, एक व्यवहारिक नजरिया दिया था संकट प्रबंधन पर। ये किताब उनके अनुभव का निचोड़ है।
अच्छा, तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में, क्या है इसका मूल विचार?
जैसा हमने कहा, ये एक व्यक्ति की यादें हैं, इतिहास है, और कहीं ना कहीं संकट प्रबंधन की एक गाइड भी।
और ये जोर देती है कि जब भयानक वित्तीय दहशत, वो जो पैनिक होता है, वो फैलता है, तब नेताओं को अपनी भूमिका कैसे निभानी होती है।
किताब का जो मूल तर्क है वो ये है कि जब पूरा सिस्टम ही ढहने वाला हो, तब नेताओं को कई बार पारंपरिक सोच,
राजनीतिक नफा नुकसान,
हाँ, और यहाँ तक कि तुरंत न्याय करने की इच्छा, उसको भी किनारे रखना पड़ता है।
उनकी भूमिका फिर बन जाती जबरदस्त ताकत से काम करने की, और अक्सर अलोकप्रिय तरीकों से।
लक्ष्य सिर्फ एक पूरी अर्थव्यवस्था को बचाना, और उसके साथ लाखों लोगों की नौकरियां, उनकी बचतें।
गाइटनर उन फैसलों का बचाव करते हैं जिन पर बहुत विवाद हुआ, खासकर वो बेलआउट वाला मामला।
हाँ, बड़े बैंकों और बीमा कंपनियों को सरकारी पैसे से उबारना।
वो साफ कहते हैं कि उनका लक्ष्य कंपनियों के मालिकों या अधिकारियों को फायदा पहुंचाना नहीं था।
उनका असल मकसद था पूरे वैश्विक वित्तीय सिस्टम को बचाना।
हाँ, जो एक तरह के सिस्टमिक बैंक रन का शिकार हो रहा था, मतलब डर के मारे सब अपना पैसा निकालने भाग रहे थे,
जिससे पूरा ढांचा ही चरमरा सकता था।
तो यहाँ उनकी भूमिका व्यवस्था के रक्षक की थी।
शायद किताब का सार यही है कि संकट में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव नहीं होता।
हाँ, चुनाव होता है बुरे और बहुत ज्यादा बुरे के बीच, और गाइटनर की भूमिका थी कम बुरे रास्ते को चुनना।
बिल्कुल, कभी कभी उन्हीं संस्थाओं को बचाना पड़ता है जिन्होंने गड़बड़ी की, क्योंकि उन्हें डूबने देने का नैतिक सबक,
उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती जो कहीं ज्यादा भयानक होती।
तो ऐसे वक्त में जो सिस्टम का जोखिम है, सिस्टेमिक रिस्क,
हाँ, वो नैतिक खतरे यानी मॉरल हैजर्ड की चिंता से ज्यादा जरूरी हो जाता है।
और ये किताब मुश्किल वित्तीय चीजों को जैसे शैडो बैंकिंग या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS, इनको भी आसान बनाने की कोशिश करती है।
हाँ, ताकि आम पाठक समझ सके कि उन फैसलों के पीछे सोच क्या थी जिन पर इतना हंगामा हुआ।
ये समझने में मदद मिलती है कि संकट के समय स्थिरता का लक्ष्य क्यों अक्सर सजा देने या न्याय करने के लक्ष्य पर भारी पड़ जाता है।
चलिए, किताब में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआती हिस्से में गाइडनर अपने सीखने के दौर की बात करते हैं।
हाँ, वो 90 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय संकट, मेक्सिको, एशिया वाले,
वहीं उन्होंने संकट प्रबंधन का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक सीखा।
और वो सबक क्या था?
कि वित्तीय संकट या घबराहट असल में भरोसे का संकट है, जड़ में डर होता है।
और अगर सरकार हिचकिचाती है या कमजोर दिखती है,
तो वो डर और बढ़ जाता है, आग में घी डालने जैसा।
इसीलिए भरोसा बहाल करना ही पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य बन जाता है।
यहीं पर वो जबरदस्त ताकत या ओवरवेलमिंग फोर्स का आइडिया आता है।
मतलब संकट में तुरंत बड़े पैमाने पर और पूरे विश्वास के साथ कार्रवाई करना,
ताकि बाजार और लोगों को लगे कि हाँ, स्थिति नियंत्रण में है, कोई संभाल रहा है।
इसी सोच ने 2008 में उनके एक्शन प्लान की नींव रखी। उनकी भूमिका थी निर्णायक और शक्तिशाली दिखना।
फिर कहानी न्यूयॉर्क फेड में उनके कार्यकाल पर आती है, 2003 से।
हाँ, वो दौर जिसे तूफान से पहले की तैयारी या द फायर हाउस कह सकते हैं।
वो देख रहे थे कि कैसे वित्तीय दुनिया बदल रही थी, शैडो बैंकिंग बढ़ रही थी,
नए जटिल वित्तीय उत्पाद आ रहे थे, डेरिवेटिव्स वगैरह,
और सस्ते होम लोन, वो सब प्राइम मॉर्गेज, उसकी वजह से घरों की कीमतों का गुब्बारा फूल रहा था।
और यहाँ गाइटनर एक अहम बात मानते हैं।
क्या?
वो स्वीकार करते हैं कि रेगुलेटर, जिनमें वो खुद भी शामिल थे, वो आने वाले खतरे के सही आकार को, उसकी गहराई को पूरी तरह भांप नहीं पाए थे।
अच्छा,
ये उन सीमाओं को दिखाता है जिनके अंदर संकट प्रबंधकों को काम करना पड़ता है, अक्सर अधूरी जानकारी के साथ।
फिर मार्च 2008 में पहला बड़ा झटका लगा, बेयर स्टर्न्स।
हाँ, वो निवेश बैंक था।
हाँ, वो लगभग डूबने वाला था।
गाइटनर की अगुवाई में न्यूयॉर्क फेड ने जेपी मॉर्गन चेस को उसे खरीदने में मदद की।
ये एक तरह से सफल रहा क्योंकि इसने तुरंत होने वाले बड़े नुकसान को रोक दिया।
हाँ, लेकिन विवादास्पद भी था क्योंकि इसने ये संकेत दिया कि सरकार बड़ी वित्तीय संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आएगी।
यहाँ लक्ष्य था एक कंपनी के गिरने से पूरे सिस्टम में जो संक्रमण फैल सकता था उसे रोकना।
और फिर आया सितंबर 2008,
वो हफ्ता
संकट का केंद्र, द स्टॉर्म,
लेमन ब्रदर्स का डूबना।
हाँ,
सवाल उठा, बेयर स्टर्न्स को बचाया तो लेमन को क्यों नहीं?
हाँ, ये बड़ा सवाल था।
गाइटनर का तर्क है कि ये कोई मर्जी का फैसला नहीं था, मजबूरी थी।
मजबूरी
कैसे?
उनके मुताबिक सरकार के पास लेमन को बचाने का कानूनी अधिकार या साधन नहीं थे। उसके पास गिरवी रखने लायक अच्छी संपत्ति, मतलब कोलेटरल, कम थी,
और बिना सरकारी गारंटी के कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था,
और ऐसी गारंटी देने का अधिकार ट्रेजरी के पास था नहीं, तो ये उनकी भूमिका की एक सीमा थी।
लेहमन के डूबने का असर भयानक हुआ।
हाँ, दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में ऐसी दहशत फैली कि कर्ज का लेन देन वो लगभग ठप हो गया।
कंपनियों, लोगों के लिए पैसा जुटाना नामुमकिन सा हो गया।
ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी संस्था का गिरना पूरे सिस्टम को हिला सकता है।
लेमन के ठीक बाद सबकी नजरें गईं AIG पर, बीमा की विशालकाय कंपनी।
और वो लेमन से भी ज्यादा खतरनाक क्यों मानी गई?
क्योंकि AIG ने खरबों डॉलर के वो बेचे थे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, CDS। हाँ, वो एक तरह का बीमा था जो बैंकों और निवेशकों ने खरीदा हुआ था।
तो अगर AIG डूबती तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक जिन्होंने बीमा खरीदा था वो एक साथ कंगाल हो सकते थे।
मतलब पूरा सिस्टम सुनामी की तरह बह जाता।
बिल्कुल, यहीं पर वो बेहद विवादास्पद फैसला लिया गया,
AIG को बेलआउट देना, $85 बिलियन, जो बाद में बढ़कर $182 बिलियन हो गए।
राजनीतिक तौर पर तो ये जहर पीने जैसा था,
आम लोगों के टैक्स के पैसे से।
हाँ, एक ऐसी कंपनी को बचाना जो खुद ही इतना ज्यादा जोखिम ले रही थी।
लेकिन गाइटनर और उनकी टीम के लिए ये महाविनाश या आर्मागेडन को टालने के लिए जरूरी था।
हाँ, ये इतना बड़ा कि डूबने नहीं दे सकते या टू बिग टू फेल की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण था।
यहाँ लक्ष्य था वैश्विक वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह गिरने से रोकना, चाहे राजनीतिक कीमत कुछ भी चुकानी पड़े।
संकट और गहराया। 2008 के अंत तक साफ हो गया कि एक एक करके कंपनियों को बचाना काफी नहीं होगा।
अब जरूरत थी एक बाजूका की, एक बहुत बड़े हथियार की। यहीं पर वो $700 बिलियन का टार्प फंड आया, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम।
हाँ।
शुरू में सोचा गया कि इससे बैंकों की खराब संपत्तियां, वो टॉक्सिक एसेट्स, खरीदी जाएंगी।
लेकिन रणनीति जल्दी बदल गई।
हाँ, ज्यादा कारगर तरीका अपनाया गया, बैंकों में सीधे सरकारी पूंजी डालना, कैपिटल इंजेक्शन।
सरकार ने बैंकों के शेयर खरीदे ताकि उनकी माली हालात सुधरे और वो फिर से कर्ज देना शुरू कर सके।
गाइटनर इस अलोकप्रिय कदम का भी जोरदार बचाव करते हैं। वो फिर दोहराते हैं, मकसद बैंकरों को अमीर बनाना नहीं था।
नहीं, मकसद था बैंकिंग सिस्टम को फिर से खड़ा करना ताकि वो अर्थव्यवस्था में अपना जरूरी काम कर सके,
यानी आम लोगों और कारोबारों को पैसा उधार देना।
जाहिर है, इस पर जबरदस्त राजनीतिक विरोध हुआ।
फिर गाइटनर ट्रेजरी सेक्रेटरी बने, ओबामा प्रशासन आया, बैंकिंग सिस्टम अब भी कमजोर था, भरोसा वो तो लगभग खत्म हो चुका था।
हाँ, यहाँ उनकी सबसे मशहूर और शायद सबसे नई पहल सामने आई, स्ट्रेस टेस्ट,
सुपरवाइजरी कैपिटल असेसमेंट प्रोग्राम। ये वाकई एक अनूठा कदम था।
बिल्कुल, इसमें अमेरिका के 19 सबसे बड़े बैंकों की सेहत की सार्वजनिक तौर पर जांच की गई।
एक तरह से ये सिमुलेशन था कि अगर अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब होती है तो ये बैंक झेल पाएंगे या नहीं।
इसके दो मुख्य लक्ष्य थे, पहला ये पता लगाना कि किन बैंकों को और पैसा चाहिए,
और दूसरा पूरी पारदर्शिता के साथ आंकड़े जारी करके जनता और निवेशकों का भरोसा वापस जीतना।
हाँ कि भाई देखो, बड़े बैंक दिवालिया नहीं होने वाले।
गाइटना मानते हैं कि ये संकट का एक निर्णायक मोड़ था।
स्ट्रेस टेस्ट ने न सिर्फ कमजोर बैंकों को निजी बाजार से और पैसा जुटाने पर मजबूर किया,
बल्कि ये भी दिखाया कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम घायल जरूर है पर जिंदा रह सकता है।
इसने अनिश्चितता के जो काले बादल थे उन्हें हटाने में बड़ी मदद की।
इसी दौरान ऑटो इंडस्ट्री का बेलआउट और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज जैसे दूसरे कदम भी उठाए गए, वो रिकवरी की बड़ी रणनीति का हिस्सा थे।
तो इस पूरी कहानी से कुछ बड़े सबक या थीम उभरते हैं?
हाँ, पहला है संकट प्रबंधन में रफ्तार बनाम सटीकता का संतुलन, और वो जबरदस्त ताकत का महत्व।
गाइटनर बार बार कहते हैं कि संकट में हिचकना जानलेवा हो सकता है। उनका एक मंत्र है, प्लान बीट्स नो प्लान।
मतलब कोई योजना ना होने से बेहतर है कि कोई योजना हो, चाहे वो परफेक्ट ना हो।
बिल्कुल, अक्सर आधी अधूरी जानकारी के साथ भी फौरन फैसला लेना ज्यादा जरूरी होता है इंतजार करने से।
इंतजार करने से संकट और बढ़ सकता है। सोचिए किसी भी बड़े संकट में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, स्वास्थ्य संकट हो, तेजी से लिए गए फैसले कितने मायने रखते हैं।
भले ही बाद में उन पर बहस हो, लक्ष्य होता है हालात को काबू से बाहर जाने से रोकना।
दूसरा बड़ा थीम है नैतिक खतरे, वो मॉरल हैजर्ड का विरोधाभास, और वो अन्याय वाली भावना।
हाँ, जैसा हमने कहा, सही लगने वाली नीति अक्सर गलत और अन्यायपूर्ण लगती है, जैसे उन बैंकों को बचाना जिन्होंने गड़बड़ी की।
उन्हें आग लगाने वाले कहा गया,
और ये वो कड़वी गोली है जिसे गाइटनर जरूरी बुराई कहते हैं।
उनका तर्क है कि लक्ष्य बुरे बर्ताव को इनाम देना नहीं, बल्कि उन लाखों निर्दोष लोगों को बचाना था जिनकी नौकरियां, जिनकी बचतें दांव पर थीं।
ये नेता की भूमिका की जटिलता को दिखाता है, जहां उसे बड़े फायदे के लिए तात्कालिक नैतिकता की धारणाओं से ऊपर उठना पड़ सकता है।
हमारे यहाँ भी जब किसी डूबते हुए उद्योग को सरकारी मदद मिलती है तो ऐसी ही बहस होती है, लोग क्या सोचते हैं बनाम नीति बनाने वालों की मजबूरी क्या है।
तीसरा थीम है राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच का टकराव।
हाँ, गाइटनर साफ दिखाते हैं कि जो चीज आर्थिक रूप से जरूरी होती है वो अक्सर राजनीतिक रूप से जहरीली होती है, जैसे बेलआउट।
विशेषज्ञों की सलाह और जनता के गुस्से या लोकतांत्रिक दबाव के बीच हमेशा एक खिंचाव रहता है।
ये तनाव तो हर जगह दिखता है। कई बार ऐसी नीतियां होती हैं जिनके लंबे समय में फायदे हो सकते हैं, लेकिन
तुरंत होने वाले असर या गलतफहमियों की वजह से उनका भारी विरोध होता है।
संकट के समय नेता की भूमिका इस तनाव को संभालने की भी होती है।
और चौथा अहम थीम, भरोसे का संकट।
हाँ, जैसा पहले कहा, वित्तीय घबराहट दिमाग का खेल है, डर से चलती है,
इसलिए भरोसा वापस लाना सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है।
स्ट्रेस टेस्ट इसी का एक उदाहरण था कि कैसे पारदर्शिता के जरिए सच सामने रखकर भरोसे को दोबारा बनाया जा सकता है।
ये बात तो छोटे स्तर पर भी सच है। कभी कभी कैसे एक अफवाह या भरोसे की कमी से पूरा माहौल बिगड़ जाता है, चाहे वो बाजार हो या अपना आस पड़ोस।
भरोसा ही तो हर सिस्टम की जान है। किताब में कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं।
हाँ, चलिए कुछ पर बात करते हैं। एक है, राजनीतिक बाधाएं आत्मघाती समझौते बन सकती हैं।
इसका मतलब है कि संकट के समय जो राजनीतिक तौर पर आसान या लोकप्रिय लगता है, जैसे कह देना कि हम बैंकों को बिल्कुल पैसा नहीं देंगे,
हाँ,
वो ऐसे नतीजे ला सकता है जो उन्हीं आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी हिमायत करने का दावा किया जा रहा था।
यानी लीडरशिप में कभी कभी जनता की राय के खिलाफ जाने का साहस भी चाहिए होता है।
एक और विचार जो पहले भी आया, कोई योजना न होने से एक योजना होना बेहतर है, भले ही योजना गलत हो।
ये दिखाता है कि अनिश्चितता में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं।
लोगों को और बाजार को ये दिखना चाहिए कि कोई है जो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, कोई रणनीति है।
तीसरा विचार थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर बहुत जरूरी है। वित्तीय संकट असल में भरोसे और नकदी यानी लिक्विडिटी का संकट होते हैं, सिर्फ कर्ज चुकाने की क्षमता यानी सॉल्वेंसी का नहीं।
मतलब अच्छी भली कंपनियां भी डूब सकती हैं अगर डर के मारे उन्हें अचानक कोई उधार देना बंद कर दे।
ये बताता है कि क्यों सरकार का आगे आकर नकदी मुहैया कराना, लिक्विडिटी देना, संकट को थामने में मदद कर सकता है।
और चौथा विचार जो बताता है कि इन नेताओं का काम कितना मुश्किल है, आपदा को रोकने के फायदे दिखाई नहीं देते।
हाँ, मतलब अगर आपने सफलतापूर्वक संकट टाल दिया तो वो भयानक नतीजे तो कभी हुए ही नहीं जिन्हें आपने रोका।
तो इसलिए लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो अलोकप्रिय कदम क्यों जरूरी थे।
ये संचार की एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो इन सब बातों से हम अपनी जिंदगी या काम के लिए क्या सीख सकते हैं?
पहली चीज तो किसी भी तरह के संकट में नेतृत्व के बारे में है, चाहे अपना कारोबार हो, कोई संस्था हो या निजी जिंदगी की कोई मुश्किल।
हाँ, अनिश्चितता में फैसला लेना,
मुश्किल मगर जरूरी चुनाव करना
और साफ साफ बात करना, ये सब बड़े सबक हैं।
दूसरा, सिस्टम रिस्क या व्यवस्थागत जोखिम को समझना।
हाँ, ये किताब दिखाती है कि आज की दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। अमेरिका के एक कोने में शुरू हुई समस्या कैसे पूरी दुनिया में फैल गई।
ये हमें दूसरी बड़ी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, महामारी, सप्लाई चेन की रुकावटें, इनको समझने में भी मदद करता है।
हमें सिर्फ टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में सोचना सिखाता है।
अपने पैसों के मामले में हमें कुछ सीख है।
हाँ, बाजार की उठापटक में घबराकर फैसले ना लेना,
जरूरत के लिए कुछ नकदी हमेशा पास रखना, लिक्विडिटी,
और अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांट कर रखना, डाइवर्सिफिकेशन,
और हाँ, संवाद, कम्युनिकेशन की अहमियत।
किसी भी जगह, दफ्तर में, समाज में, जब मुश्किल लेकिन जरूरी बदलाव या नीतियां लागू करनी हो तो लोगों को ईमानदारी से और साफ साफ समझाना बहुत जरूरी है।
गाइटनर खुद मानते हैं कि उनकी सरकार इस मामले में और बेहतर कर सकती थी, और ये भी एक सीखने वाली बात है।
नेता की भूमिका में अच्छा संवाद भी शामिल है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि संकट के समय कितने कड़े और निर्मम समझौते करने पड़ते हैं।
हाँ, अक्सर कोई सीधा साधा अच्छा रास्ता होता ही नहीं, सिर्फ कम बुरा चुनना पड़ता है।
ये किताब वॉल स्ट्रीट को बेलआउट मिला जैसी आसान हेडलाइन के पीछे की जटिलता दिखाती है,
और याद दिलाती है कि असल लक्ष्य बड़ी तस्वीर को, आम लोगों की जिंदगी को बचाना था। मुझे ये पढ़कर हैरत हुई कि उस वक्त फैसले लेने वालों पर व्यक्तिगत रूप से कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा।
हाँ, नींद की कमी, चौतरफा आलोचना,
और साथ में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी का बोझ,
और हाँ, स्ट्रेस टेस्ट जैसी नई चीज सोचना और उसे लाडू करना, ये भी दिखाता है कि संकट के समय सिर्फ हिम्मत ही नहीं, नई सोच की भी जरूरत होती है।
तो चलिए आज की बातचीत के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं।
गाइडनर चेतावनी देते हैं कि ऐसे संकट फिर आएंगे, ये तय है।
इस किताब में हमने देखा कि 2008 में जरूरी समझे गए अलोकप्रिय समाधानों को लागू करने में कितनी राजनीतिक मुश्किलें आईं।
इसे देखते हुए क्या लगता है कि आज हमारा समाज या हमारी राजनीतिक व्यवस्था अगले बड़े संकट में ऐसी ही कड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा तैयार है,
या राजनीतिक दबाव फिर से प्रभावी कार्रवाई के आड़े आ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।